So this is an English song about Krishna's pastimes in Vrindavan with his parents. And it's got a Hare Krishna chorus, which you can also join in. Krishna is so wonderful, it fills my heart with joy when I think about the pastimes of the wonderful boy. This ice and bunny strike a fresh cloud of rain, and what I sing you want to hear again and again. He's the dream and a tenacity, confronting when I say, when the demons are on top and it is all in play.
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नाम्ने गौरवस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विसुभानुते देवी प्रणमामि। आज हम लोग परम सौभाग्यवान हैं। आज हमारे बीच यहाँ के इस नगरी के मेयर और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है। एक भारतवासी होने पर भी यहाँ पर यह सम्मान मिला है, ये भारतवर्ष का ही सम्मान है। विशेष करके आज इस सभा में हम लोग के परम आराध्य वृंदावन धाम के क्योंकि लीलाओं के स्थल के उनके सेवक नंदगांव के मंदिर के गोस्वामी जी भी आज उपस्थित। आज हम लोगों को ब्रजवासियों का भी दर्शन करने का सौभाग्य। I think that we are so fortunate to be here. I am so glad. I have come to India from India to see Vedic culture and knowledge. What is Vedas? What is Vedic Jnan? I think that in this Kali Yuga they are fighting only praise of asa, hope that Vedic knowledge and culture can give peace and tranquility in this whole world. To love each other, and it cannot be without. When we love the personality, supreme personality of Godhead, that is Krishna and Srimati Radhika, his energy has created this world. He is supporting and nourishing this world. We are not seeing the fact is there. Before my telling anything, I may request
Lord Mayor
to speak something, and then I will, because he will have to go, he has to loaf somewhere, so I am requesting him to speak something, and then we will do it. Then go son.
Jai Shri Krishna, family, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me and Lady Merit to Devachan. We are delighted to be with you in the presence of Srila Narayan Maharaj. Srila Narayan Maharaj is the Vice President of the Shri Gaudiya Vandata Samadhi, the institution that set up by Gurudeva to propagate the message of devotion to Radha and Krishna throughout India, and of course the first time to Europe and USA. That's why you're with us today. This visit to Europe and USA, as I understand, is the first one. I welcome you, Srila Narayan Maharaj, to this great city and multicultural city. Now before I wind up my speech, I may request either for the information of the audience, I being the Lord Mayor for 96 and 97, my appeal for the current year is education for life for young children of the age of 3 to 15. I being a teaching profession myself, the changing lifestyle and the difficult decision the youngster has to make these days, we have to prepare them for life. We have to educate them about their body, the substances that affect them, physically and psychologically. So it should be their decision, not we should be telling them what's wrong or right. It is for them to decide what's right and wrong for themselves. So my target is to raise £100,000 to buy a mobile, fitted with the latest technology, analog educator, who will go from school to school. And in 1 year, about 15,000 children will be covered by this law. We are aiming for 3 to 15 a year, and only £10 will give an education to a child for 3 years. So therefore, please, I request you to contribute generously to Lord Mayor's Rupees 1996 with £10. Thank you. So I again want to welcome you for me to Leicester, and we're looking forward to your Padyatra. As I understand, in Leicester, I think you will. वो कहते हैं हम हिंदुस्तान में चार चांद लगा देंगे हमारे शहर को। जय श्री कृष्ण।
just like to receive a little donation from Nine Miles.
Manandasya Ginanjana Shalakaya Sakshurun Militam Gena Tasmay Shri Gurave Namah Mancha Kalpaturubhyascha Krita Sindubhya Eva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. I'd first like to offer my respectful obeisances unto my Gurudev, Siddhanta Narayan Maharaj, and to all the assembled devotees and guests. I'd like to thank all the guests for coming here tonight and for giving us the opportunity of sharing with you the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna, and especially to give you the opportunity to hear from His Divine Grace Srila Narayan Maharaj. And what we are presenting is the Shuddha Dharma, the pure and constitutional inherent dharma or religion of the soul. So our acharyas in the Sipa succession, especially Srila Bhaktivinoda Thakur, he has explained that actually dharma is one that is called Vishuddha Dharma, also known as Sanatana Dharma or Vaishnava Dharma. But in the world today, we see that there are so many different religions going under different designations, such as Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, etc., etc., so many. So it appears that there are different dharmas or different religions, but he has explained that in essence there is only one dharma, Vishuddha Dharma, the pure dharma of the soul. But when the living entity comes in contact with this material nature, then his nature becomes adulterated, and then dharma becomes of two types. One is called Nirupadi, which means without any designations, and the other is Supadi, which means with designations. So Subhadik or Subhadi Dharma, which means religion which has different designations, stems from the identification with this body. And it extends into dharma related to family, related to wife, children, so many different dharma or so many different responsibilities, duties are there in relationship to the body. So this is sobhavik dharma. It is not the constitutional dharma of the soul. And when the living entity becomes purified and gradually realizes that he is distinct from this body, he has nothing to do with this material world, he is not a product of the most material nature, then he can come under the Nirupadik Dharma, and that is Sanatana Dharma or Vaishnava Dharma. And in that state, he is able to understand his pure identity in relationship to the Supreme Lord, Bhagavan Sri Krishna. So, in the Vedic literature, it is described, so many different incarnations of the Lord are described there, but the original Supreme Lord is Bhagavan Sri Krishna. And our acharyas have given so much evidence to this fact, especially Srila Rupa Goswami. He has written one book called Lagu Bhagavatamrita, and in this book he has described all the different types of incarnations of the Lord, different types of devotees, the different spiritual dhams, and given their various gradations. So this is a big subject matter, but just to briefly summarize, he has explained that the Swayam Rup is the original form of the Lord, and he has defined that as Ananya Pekshiyat Rupam Swayam Rupasa Uchyate. So that form, or that manifestation of the Lord, Ananya Pekshi, which is not dependent on any other form, That form is called Swayam Rup. So that is Bhagavan Sri Krishna. There are so many other manifestations as Swamsha Vilas, Parikatma, Adesh, Dila Avatars, Guna Avatars, etc., etc. So many different manifestations. But all of these various manifestations, they are all dependent on the original form, Sri Krishna. And only Sri Krishna is not dependent on any other form. Therefore, he is known as Swayam Rup. And one Acharya, Baladeva Jibhushan, he has given commentary on this shloka of Rupa Goswami, and he has explained, by quoting from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, how Krishna is the original supreme form. So when Krishna went to Mathura, and he was in the wrestling arena of Kamsa, then so many different residents were there. They were all seeing the form of Krishna, and especially the ladies of Mathura, they were seeing the form of Krishna and appreciating his beauty. And they were expressing the great fortune of the gopis of Raj, who were always able to behold that form. And so they uttered this one shloka, Gopyastapa Kimacharam Yaramushya Rupam Lavanyasaram Asamargam Ananyasiddham Digdir Pibanti Anusava Durapam Ekanta Dhamma Yasasa Sriya Aishwarasya. So in this verse they are praising the beauty of Krishna. They are saying that the term Asamargam means that nothing is equal to or greater than the beauty of Krishna. And the gopis, they're saying, what kind of austerities did they perform? Gopyastapakimataram. What kind of austerities did they perform to have the great fortune of being able to behold this form? Not only behold, but drigbir pibanti, they were drinking that form through the eyes. And they also explain there, Ananyasiddham. Ananyasiddham means that the beauty of Krishna was not dependent on any other on embellishment, on decoration, dress, or anything else. Normally, when a person dresses themselves very nicely with beautiful clothes and ornaments, then their beauty is enhanced. But Krishna's beauty is so extraordinary that his ornaments, his dress, they become beautified in contact with his body. So this is the significance of Ananyasiddham. And Ekanta Dhamma Yasasa Sriya Aishwarasya. His body is the Ekanta Dhamma, means that it is the one and only or the ultimate shelter of these qualities of beauty and opulence and fame. So this verse is confirming Krishna's position as Swayam Rup. And then he also, Rupa Goswami himself, confirms Krishna's identity as Swayam Rup by quoting this verse from Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. So Bhadeva Jibhushan Prabhu gives a very wonderful commentary on this. I don't want to take so much time now because I want to give you the opportunity to hear from Srila Narayana Maharaj. But in concluding, we can say that this topmost feature of the Lord, which is his Braj feature, this is our ultimate goal, this is our ultimate destination, is to revive our relationship with Krishna in his feature, in Braj. And this can be done most easily by the association of the residents of Raj, who are steeped in that mood of loving devotion to Radha and Krishna. So we are most fortunate tonight that without going through some great austerity of having to spend so much money and go to Vrindavan and then seek out, even if you go there, you may not be able to find a sadhu or a saint who can actually reveal this knowledge to you. These personalities are extremely rare, but without any endeavor on our part, such a personality has appeared in our midst tonight, and he is the embodiment of this divine love for Radha and Krishna. And by hearing from him, he can awaken this attraction in us to have this love for Radha and Krishna. So please listen very carefully to his words. Hare Krishna.
अज्ञानचमरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कांतीक्षितामृतसद्विन्दु स्वाय वास्तेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। परम वंदनीय परमादरणीय श्री विराजमान श्री नारायण स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, क्षमा करना, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ब्रज भाषा या गुजराती भाषा या पंजाबी भाषा, अन्य भाषाओं में मेरा स्थान है। इंग्लिश का एक कारण था, ये प्रभु जानते हैं, मेरे पिताजी ने मुझको नहीं पढ़ने दिया। जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने मुझे मना किया कि ये नहीं पढ़ना है। अब ये बहुत प्राचीन बात है, आज से करीबन 50 वर्ष पहले बात कह रहा हूं। उन्होंने मुझे मना किया कि ये भाषा नहीं पढ़नी है, इसे मुझे संस्कृत में डाल दिया। संस्कृत भाषा मैंने पढ़ी, हिंदी पढ़ी, संगीत में मैंने बीए किया म्यूजिक में, और भी अन्य ग्रंथों का अवलोकन किया। एक ही बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हमारे श्री स्वामी नारायण जी महाराज और श्री केशव जी इतने महान विभूति हैं, और वो विभूति इतने पढ़े लिखे, इंग्लिश में आपका स्थान है और अन्य भाषाओं पर स्थान है और धर्म पर पूर्ण स्थान है, इतना होते हुए भी ये ब्रजवास क्यों कर रहे हैं? समस्या ये है। उस ब्रज के विषय में मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, भगवान श्री कृष्ण के पास में अर्जुन रहते हुए भी कृष्ण को वो क्या समझते थे, या वो कृष्ण को अपना नौकर समझते थे, या कृष्ण को अपना संबंधी समझते थे, अथवा कृष्ण को अपना संबंधी यानी अपनी बुआ का पुत्र समझते थे, परंतु कृष्ण क्या थे ये जब उनने स्वयं कृपा की, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगेश्वरम, जब तक तुमको मैं दिव्य दृष्टि नहीं देता तब तक तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, जिस आश्रम पर विराजमान होते हैं, जब तक आप सब वैष्णवों को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा कृपा नहीं करें तब तक उस परम प्रेममयी ब्रजभूमि का दर्शन नहीं होता। वो ब्रजभूमि क्या है? वृंदे आपि पालिता से दिव्य केले कानने स्वर्ण रत्न दिव्य गंध मेदुरा बनी थले दिव्य सत प्रसून रत्न साक्ष मंडला व्रते छाई यात शोभने मुनिंद वृंद लोगन। वह ब्रजभूमि दिव्य है, वहां के वृक्ष आदि सब दिव्य है, वहां जो वृक्षों में फल लटके हुए वो सब दिव्य है, और उस भूमि को कितना स्थान, उस भूमि को हरेक कोई जान भी नहीं सकता, और उस भूमि में अनेक प्रकार के मणि है, रत्न है, वो सब सुशोभित है, परंतु वो सब गुप्त है। कोई महान पुरुष कृपा करें तभी। एक हमारे नंदगांव में नित्यानंद जी विराजते थे, शायद आप जानते होंगे, बाबा नित्यानंद जी महान थे, और आज तक वो इतनी संत सेवा करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं। तो ये सब क्यों, ब्रजभूमि का विशेष कितना महत्व कैसे दिया गया? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस ब्रज की पूजा करते थे। स्वामी जी ने, श्री राधिका जी ने यही कहा कि मुझे अगर आपको मैं चाहती हूं तो मुझे ब्रज में ले जाना चाहते हो तो पहले ब्रज की स्थापना करो, वहां गिरिराज की स्थापना करो, वहां यमुना जी की स्थापना करो, वहां कदम वृक्षों की स्थापना करो, वहां संतों की कुटियों की स्थापना करो, यहाँ पे रूप सनातन जीव सनातन गोस्वामी आदि आदि विराज करके हमारा भजन करें। चैतन्य महाप्रभु जी को कह दिया कि आप भी अवतरित होकर के, ये स्वामी जी ने अपनी चुंदरी उनको दी, ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर दिया और दोनों को मिश्रित करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। जो कि चैतन्य महाप्रभु का क्योंकि वो प्रेम का स्थान था, स्वामी जी प्रेम की स्वरूपा थी और ठाकुर जी दोनों को मिश्रित करके और श्री चैतन्य महाप्रभु जी पधारे। चैतन्य महाप्रभु जी का विरह वो दर्शन की, जो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन माधुर माधुर वंशी बाजी यही वृंदावन। कृष्ण चैतन्य राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन माधुर माधुर वंशी बाजी यही वृंदावन। आहरण से अपने कानों में श्री श्याम सुंदर की मुरली को सुनते थे चैतन्य महाप्रभु, और जिस समय उनको ये कह देते कि वृंदावन, उसी समय उनके नेत्र से श्रावण भाद्रपद की तरह वर्षा होती थी नेत्रों से जल की, और उस विरह में इतने डूब जाते थे कि जिसका कोई वर्णन नहीं। उस चैतन्य महाप्रभु जी की परम कृपा में ये एक बड़ी भारी विशेष बात है, वो कि ऐसी ऐसी उन्हीं उसी स्वरूप को लेते हुए श्री स्वामी नारायण जी महाराज जो आपके सामने विराजमान है, वह जो दर्शन था उनके जो स्वरूप थे, उस स्वरूप का दर्शन कराने के लिए ही आप सब में उपस्थित हैं और आपके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रज की गति को भगवान तो है ही आरंभ से विराजते हैं वैसे नहीं, पर हरेक को दर्शन नहीं देते, पर भगवान के स्वरूप में ये संत लोग का पधारते हैं और उनके द्वारा आप उस परम प्रेम में ब्रजभूमि का दर्शन कर सकते हैं। ब्रजभूमि एक यूनिवर्सल है, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, यूनिवर्सल। वहां के पश्चात फिर जीव को कोई स्थान नहीं रहता, वहां कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो वहां वृद्ध पड़ा हुआ है, वहां वैराग्य नहीं, वो भी वृद्ध है, पर उसका भक्ति जवान है। क्योंकि ये भक्ति मार्ग है कि जितने भी आचार्य हमारे वृंदावन में हुए ब्रज में, उन्होंने भक्ति का ही प्रचार किया है और उनको दूसरी बात नहीं। यहां तक बात है, उद्धव इतना ज्ञानी था और भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी बात को नहीं मानते थे उद्धव जी, परंतु जब श्री कृष्ण ने कृपा की तो उनको कहीं नहीं भेजा, उनसे ये नहीं कहा तुम बद्री विशाल चले जाओ, उनसे ये भी नहीं कहा तुम केदारनाथ चले जाओ, उनसे ये भी नहीं कहा तुम रामेश्वर चले जाओ, उनसे कहा कि तुम कहीं मत जाओ, निष्केवल सी ब्रज में जाओ और वृंदावन जाओ, वहां गोपियों के पास में उनका सत्संग करो। वो गोपीजन क्या है, उनके सत्संग के द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो, मैं क्या हूं। इतना सब कुछ पढ़े जिन्होंने बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की, और बृहस्पति जी विद्या प्राप्त करने पर भी भगवान श्री कृष्ण को जल्दी नहीं समझ सके, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सके, उस स्वरूप को जानकारी किसने दी, उन परम प्रेम नहीं ब्रजांगनाओं ने, ब्रज देवियों ने, उस ब्रज भूमि ने। फिर तो उसने यही कह दिया, साफ कह दिया, क्लीन शब्दों में कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए आशा महो चरण रेण दुर्ता महंताम वृंदावने किवत गुलम संसदी नाम याद सजन सजन मारे पसंद चित्ता भेजर मुकुंद पद्मे शुद्ध भूमिज्ञा। दूसरी बात, बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम ताल रेणु अभिष्णस यासाम हरकथो गीतम पुनाति भुवन प्रेम। इस त्रिलोकी में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जैसी स्त्री ब्रज की गोपी है। आपको पता है हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने एक इतनी सुंदर प्रणाल का रखी है अपने संतों के लिए, अपने सेवकों के लिए, अपने सेवियों के लिए कि तुम अपने हाथ से गर्म रोटी मत बनाओ, अपने हाथ से तुम खीर मत बनाओ, अपने हाथ से तुम कुछ मत करो, निष्केवल जाओ ब्रजवासियों के घर से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मांग करके खाओ, उसी में तुम्हारी भक्ति सफल हो सकती है। ये कोई बड़ी कम बात नहीं है, कितनी बड़ी भारी बात है कि आप वहां जाओ। उन ब्रजवासी आज भी हमारे ब्रज में नंदगाम बरसाना गोवर्धन आदि आदि क्षेत्रों में महात्मा लोग संत लोग विराजते, हरि नाम जपते, आरण्य सखी चैतन्य महाप्रभु कृपा से वो आज भी ब्रजवासी के टूक भूख में खाऊं सांझ सवेरो रात दिन उन टुकड़ाओं को भी इतनी सम्मान करते, अगर रात को बच जाते सुबह छात में ऊन खाते और उस टुकड़ाओं के प्रताप से, उन ब्रजवासियों के प्रताप से, उस ब्रज के प्रताप से आज भी उनको प्रिया प्रीतम साक्षात दर्शन देते हैं। ये विशेषता है, ये ब्रज की विशेषता है। इसलिए आचार्य चरण पदार्थ कई सब्जी नारायण स्वामी जी और आज उनका ये एक सिद्धांत है कि तुम कुछ भी उपासना मत करो, निष्केवल एक ही उपासना करो ब्रज की। क्यों? कि एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका, तीन बार त्रिवेणी जाकर के नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बारह बार बद्रीनाथ घूम के आओगे, कोटि बार काशी, केदार रामेश्वर, गया जगन्नाथ, सब तीर्थ कर आओगे, होते प्रत्यक्ष दर्शन अब हूँ श्याम सुंदर के, पर वृंदावन तो आनंद तीन लोक नहीं पाओ। तो परम वैष्णव वो शिव वृंदावन है, जहां कहीं भी आप कहीं भी कोई सुख नहीं है। नस्वदेव राजस्य नस्व चक्री वर्तान यस्वत किंचन मात्र से मुनि एकांत जीवन। संसार में कहीं सुख है ही नहीं, अगर सुख है तो ब्रजभूमि में है, अगर आनंद है तो ब्रज भूमि है, अगर संतों का दर्शन करना है तो ब्रज में जाइए, अगर आपको कुछ भी करना है सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल एक ही वो वृंदावन जहाँ आप देखें वहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ तक बात है क्या कुसुम सरोवर, क्या गोवर्धन की चारों तरफ से रहती में आप जाकर के देखें तो वहाँ आपको सब जगह श्याम सुंदर का दर्शन होगा, प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा, उसी गोवर्धन की तरह की जहाँ पर आज भी ठाकुर जी सदा नित्य नव विराजते। और ये संत लोग अपना घर बार छोड़ करके, ढाका को छोड़ करके, बंगाल को छोड़ करके, नदिया को छोड़ करके, मायापुर को छोड़ करके वो ब्रज में निवास करते हैं। और वहां किसके लिए निश्चित कि किसी प्रकार से इस जीवन में हमको एक बार भी श्री कृष्ण मिल जाए, इस जीवन में एक बार भी हमको श्री स्वामी जी का दर्शन हो जाए तो हम अपने को सफलता माने। उन ब्रजवासियों का